आप सभी कहाँ बैठे हैं जी? कहाँ बैठे हैं? बाबा के घर में। बाबा हमारा कौन है? पिता है। और आए कहाँ से हैं? अभी यहाँ पर कहाँ से आए हैं? दिल्ली ओआरसी से चलकर कहाँ आए हैं? बाबा के घर में, पिता के घर में। दुनिया के अंदर भी जब बच्चा माता पिता के घर से दूर होता है और फिर जब पिता के घर पहुंचता है, कैसा फील करता है? कैसा फील करता है? हाँ, एक निश्चिंतता की अनुभूति होती है। जो कुछ भी मन में चल रहा होता है वो सब जैसे कि कुछ पल के लिए तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। मन एकदम से कूल एंड काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। फील कर रहे हैं ऐसा? हाँ, क्योंकि किसके घर में आए हैं? पिता के घर में। तो चलिए आज की सभा में उस पिता का भी हम आह्वान करें और साथ साथ हमारे वरिष्ठ आदरणीय दीदी सरोज दीदी जी को भी मैं निमंत्रण देती हूँ कि आए और मंच को आकर सुशोभित करें। और साथ ही साथ सभा में से हमारे जय भगवान भाई जी, जो इस पूरे ग्रुप को कोऑर्डिनेटर बनकर यहाँ लेकर आए हैं, आपसे भी निवेदन है आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जय भगवान जी। हाँ जी, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। उससे पहले उस परम पिता को याद करते हुए आज की सभा में उनको भी आमंत्रित करें। तो ईश्वर से जो प्रीत लगाए वो बन जाए गुणवान। तो हम सभी कहाँ बैठे हैं? जहाँ स्वयं पिता परमात्मा ईश्वर आज आप सबका मेजबान बना हुआ है ना? तो उस पिता परमात्मा का भी स्वागत है, तो मंच पे उपस्थित हमारी आदरणीय दीदी जी और भाई जी का भी स्वागत है। तो आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अरावली पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के बीच में बसा ये ज्ञान सरोवर, जहां एक एक दृश्य बहुत ही मनोहारी है। ऐसे सुंदर स्थान पर आप आकर पहुंचे हैं। जब ज्ञान सरोवर की बात आती है तो शास्त्रों में उल्लेखित मानसरोवर भी याद आ जाता है कि मानसरोवर से जुड़ी हुई कौन सी बात है कि जब भी कोई मानसरोवर में डुबकी लगाता है तो डुबकी लगाने से पहले कुछ और होता है और डुबकी लगाने के बाद वो क्या बन जाता है? परी और परिजादे बन जाते हैं। तो वास्तव में वो जो उल्लेख आया है शास्त्रों में मानसरोवर का, हम तो यही समझते हैं वो इस ज्ञान मानसरोवर का ही उल्लेख है एक तरीके से। क्योंकि वास्तव में जब हम ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं तब हमारे मन की मैल, धूल, गंदगी सब धुल जाती है। और जब मन की मैल, धूल, गंदगी धुल जाएगी, कांच पे अगर धूल हो, गंदगी हो और वो सब साफ कर दी जाए तो कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा वो? हाँ, उज्जवल धवल धवल दिखेगा ना? ऐसे ही मन भी जो धूल और मिट्टी से भर चुका है नकारात्मकता की, उसको जब वो ज्ञान गंगा में स्नान करता है वो सारी धूल निकल जाती है, मन शुद्ध पवित्र बन जाता है, पावन बन जाता है। और जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन पावन है, वही तो फरिश्ता कहलाता है, वही तो परी और परिजादे कहलाते हैं। तो आप भी यहाँ आए हैं तो माना ही आप सभी यहाँ क्या करेंगे, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो अपने मुझे बताया गया कि आप सभी लगभग लगभग बिजनेसमैन हैं, तो अपने बिजनेस से अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं, तो अवश्य ही कुछ लक्ष्य लेकर ही पहुंचे होंगे ना। कौन सा लक्ष्य? एक लक्ष्य तो होता है घूमने का, और दूसरा लक्ष्य शांति अनुभव करने का। तो जो शांति अनुभव करने के लक्ष्य के साथ आए हैं, तो वो शांति की अनुभूति सिर्फ उतने ही समय तक के लिए कि जब तक आप यहाँ हैं, या जब यहाँ से भी जाएंगे तो शांति की अनुभूति आपके साथ साथ चले, ऐसे लक्ष्य के साथ आए हैं। क्या कहेंगे? सिर्फ जितनी देर यहाँ पर है उतनी देर के लिए, या यहाँ से चले जाने के बाद भी जहाँ भी हम जाएंगे वो शांति की अनुभूति, वो खुशी की अनुभूति हमारे साथ साथ चले, है ना? वो कब हो सकता है? वो कब हो सकता है? मंदिर में भी जाते हैं, डॉक्टर के भी पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है? एक पेशेंट अगर डॉक्टर के पास चला जाए, इलाज, तो जितनी देर डॉक्टर के पास बैठेगा उतनी देर में ठीक हो जाएगा वो? उतनी देर में ठीक हो जाएगा वो नहीं, उतनी देर में वो इलाज की विधि आदि सीख लेगा और उसको जीवन में उतारता चला जाएगा। डॉक्टर के पास से चले जाने के बाद भी तब उसका इलाज हो जाएगा और वो एक तंदुरुस्ती का अनुभव करेगा। ठीक ऐसे ही जैसे आपको कहा कि आप ज्ञान सरोवर में पधारे हैं, जिसको ही हम कहेंगे कि ज्ञान मान सरोवर में, कि जहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, उस परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान आप यहाँ पर आज से ही लेकर आगे आने वाले 2-3 दिनों में सुनेंगे, और जैसे जैसे वो सुनते जाएंगे अपने बुद्धि में भी छापते जाएंगे और साथ साथ अपने साथ लेकर जाएंगे। तो अनुभूति यहाँ से शुरू करेंगे बेशक, लेकिन उसको आगे भी कंटिन्यू करते रहना है, तब सच्चे मायने में हम क्या बन जाएंगे? फरिश्ते बन जाएंगे। और फरिश्ता माना ही जिसके पास अपना कोई गम नहीं है, जिसके पास अपना कोई दुख दर्द नहीं है, लेकिन जिसके पास वो खुशियां है, वो उमंग है, वो उल्लास से उन लोगों पर लुटाने के लिए जो गमों से भरे हैं, जिनके जीवन में दुख दर्द है, कि जिनके ऊपर वो अपनी खुशियां लुटा के उनको भी दुखों से परे कर देते हैं, उनके जीवन में भी खुशियां भर देते हैं। तो वो ज्ञान सीखने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। अवश्य ही आप बहुत 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 भाग्यशाली आत्माएं हैं, तो ऐसी भाग्यशाली आत्माओं का आपका इस परमात्मा के आंगन में पुनः पुनः बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। महाभारत के एक सीन की बात याद आती है कि युद्ध चलना था कुरुक्षेत्र में, और उससे पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों किसके पास पहुंचे? श्री कृष्ण के पास पहुंचे। और जब श्री कृष्ण के पास दोनों पहुंचे तो श्री कृष्ण ने कहा, एक तरफ है मेरी सेना और दूसरी तरफ हूं मैं स्वयं। आपको जिसका भी चुनाव करना है अपनी मन पसंदी से चुनाव कर लो। दुर्योधन ने किसका चुनाव किया था? सेना का चुनाव किया था। और अर्जुन ने श्री कृष्ण का। अब वो तो महाभारत की बात थी, सेना और कुरुक्षेत्र, यहां कौन सा कुरुक्षेत्र है? यहां कौन सा कुरुक्षेत्र है? हाँ, यहां है हमारा कर्म क्षेत्र, कि कर्म माना ही करना, सारा दिन ये करना है, वो करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, सब करना ही तो है, कर्म ही तो है। तो कुरुक्षेत्र माना हमारे अपना कर्म क्षेत्र, हमारा अपना जीवन। तो वहां कुरुक्षेत्र में युद्ध चलना था, और हमारे जीवन में क्या चल रहा है? हमारे जीवन में क्या चल रहा है? एक से बढ़कर एक हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं, है ना? तो वहां तो युद्ध में विजय पाने के लिए सहायता की जरूरत थी, और यहां पर हमारे जीवन में आने वाले चैलेंजेस को हम कैसे पार करके अपने जीवन को सफल बनाएं, उसकी जरूरत है। तो अर्जुन ने किसका सिलेक्शन किया था? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण प्रतीक है भगवान का, और अर्जुन किसका प्रतीक है? हम सब आत्माओं का प्रतीक है। सेना कौन सी है? वो कुरुक्षेत्र हमारा कर्म क्षेत्र है। एक्चुअली क्या है सेना? जो है हमारे पास धन है, साधन है, पावर है, पोजीशन है, योग्यताएं हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, सब है ना हमारे पास, नहीं है? लेकिन ये सब होते हुए भी लगा कि जीवन में जो सफलता होनी चाहिए नहीं है, इसलिए हम उन सब बातों को एक तरफ रख के यहां पहुंचे हैं, उस परमात्मा का साथ प्राप्त करने के लिए। कि उस परमात्मा का साथ अर्जुन ने कैसे प्राप्त किया था? दुर्योधन ने क्यों सेना का चयन किया था? क्यों सेना का चयन किया था दुर्योधन ने? दुर्योधन ने सेना का चयन इसलिए किया था क्योंकि उसने सोचा श्री कृष्ण करेगा क्या, क्योंकि उसको तो युद्ध करना नहीं है, फिर ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर फायदा क्या, मैंने युद्ध में थोड़ी ना हार खानी है। तो उसको लगा पहले से ही क्या है, मेरी हार निश्चित है अगर मैं श्री कृष्ण का साथ लेता हूं तो, क्योंकि उससे कोई मुझे फायदा होने वाला नहीं है, और इसलिए उसने चयन वो किया। लेकिन अर्जुन ने किसका चयन किया? श्री कृष्ण का। और सारी दुनिया जानती है विजय किसको मिली? विजय किसको मिली? अर्जुन को मिली। तो कैसे मिली जबकि श्री कृष्ण तो युद्ध भी नहीं करने वाला था? अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ जरूर लिया, लेकिन क्या उसके जीवन में चैलेंजेस बंद हो गए? सामने वाली सेना तो फिर भी प्रहार कर रही थी ना। तो ऐसे ही हम भगवान का साथ लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में चैलेंजेस आना बंद हो जाएंगे, या अगर चैलेंजेस आएंगे तो भगवान खुद उसको फेस करेगा, नहीं। लेकिन क्या करेगा भगवान? क्या देखा था उसमें कि अर्जुन को श्री कृष्ण छोटी छोटी सी टिप्स देते जाता था कि युद्ध में इस समय आपको क्या करना चाहिए। कि जैसे ही उसको टिप्स मिलती जाती थी उसको वो प्रैक्टिकल करता था, और सारी दुनिया जानती है उस युद्ध का परिणाम कि विजयी वो बना। तो इसीलिए मैं पुनः पुनः कहती हूं, आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं कि धन साधन पावर पोजीशन, अपनी योग्यताएं, अपने कॉन्टेक्ट्स, अपने स्किल्स टैलेंट्स सबको एक साइड रखकर जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर आप इस स्थान पर आकर पहुंचे हैं। जो स्वयं पिता परमात्मा का घर है, कि जहाँ पिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान गंगा के रूप में बहता रहता है, कि जिस ज्ञान को आप अपने भीतर भरते चले जाएंगे और जीवन में उतारते चले जाएंगे, तो जीवन के एक एक चैलेंजेस आप देखेंगे जो चुटकियों में हम हल करते चले जा रहे हैं, और हमारी मन स्थिति एकदम कूल एंड काम है, एकदम रिलैक्स्ड है, और ही हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है कि मन में वो करुणा भाव जागृत होता जाएगा कि जैसे हमने इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन को कूल एंड काम बनाया है, ऐसे ही औरों को भी प्रेरणा देते चले और सबके जीवन को इतना ही शांत और शीतल बनाते चले। इसी को तो फरिश्ता कहते और किसको कहते हैं, है ना? तभी कहा आप सभी का इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में पुनः पुनः स्वागत है, सत्कार है। इस ज्ञान सरोवर में जो ब्रह्मा कुमारीज का एक कैंपस है, ब्रह्मा कुमारीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1936-37 में, जबकि भारत हमारा अविभाजित था, विभाजन तब नहीं हुआ था, हैदराबाद सिंध में उसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना के निमित्त स्वयं पिता परमात्मा बने। कि उस परमात्मा पिता ने क्या किया, जैसे हम सभी महाभारत का उदाहरण दे रहे थे, सुन रहे थे, कि महाभारत में बात आती है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, एक पूरा लंबा श्लोक है जिसका सिंपल सा अर्थ है कि इस धरा पर जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब वो पिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होता है, और अवतरित होकर क्या करता है, अधर्म का विनाश करता है, सत धर्म की स्थापना करता है, साधु जनों का उद्धार करता है। यही बात अलग अलग शास्त्रों में भी अलग अलग शब्दों में आई है। किसी ने इसको जजमेंट डे कहा, किसी ने इसको कयामत का दिन कहा, किसी ने इसको डूम्सडे कहा, लेकिन बात सभी ने एक ही कही है। तो बात थी कि जब अधर्म बढ़ता है तब वो आता है। क्या देखकर लगता है संसार को, जिस संसार से आप आए हैं उस पर एक नजर फेर लो और बता दो, क्या लगता है अधर्म बढ़ा हुआ है, लगता है धर्म की ग्लानि हुई है, लगता है? हाथ उठा के अपना उत्तर देंगे, किस किस को लगता है अधर्म बढ़ा है। धीरे धीरे हाथ उठ रहे, अभी भी कुछ बाकी है, किसी के हाथ नीचे हैं, मतलब इतने हैं, तो ऊंचा उठा लो तो क्लियर पता चल जाए, तो बहुत अच्छा, आंसर आपका राइट है, पास हो गए। अब ये थोड़ा सा बता देना, क्या देखकर लगा कि अधर्म बढ़ा है? अधर्म बढ़ा है बेशक, सही बात है, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए ना, मैं किसको कह रही हूं अधर्म। क्या देखकर लगता है कि अधर्म बढ़ा है? क्या देखकर लगता है कि धर्म की ग्लानि हुई है? हाँ, न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर देख के तो ठीक है, उसमें क्या देखकर लगा कि ये अधर्म है, क्या देखकर लगा कि ये धर्म की ग्लानी है, जो आजकल बच्चों के साथ हो रहा है। देखो धर्म की बहुत बहुत सरल परिभाषा है, धारण करना। धारण करना जैसे हम कहते हैं पानी का स्वधर्म है शीतलता, मतलब पानी में स्वयं में मौलिक रूप से शीतलता धारण की हुई है, लेकिन अगर पानी गैस के ऊपर रख दिया जाए तो वो गर्मी को भी धारण कर लेता है और ऐसे समय पर उसकी मौलिकता छुप जाती है, क्योंकि गर्म पानी गैस के ऊपर रखे हुए पानी पर अगर आप हाथ रखेंगे आप उसके मौलिक गुण धर्म का अनुभव कदापि नहीं कर सकते, हाथ जल जाएगा आपका उसमें डालेंगे तो मौलिक रूप से तो पानी ने शीतलता धारण की है, लेकिन उसके बदले अगर और भी कुछ धारण कर लिया तो मौलिक गुणधर्म उसका क्या हो जाता है, छुप जाता है। इसको ही कहते हैं मौलिक धर्म जब छुप जाए वो है ग्लानि धर्म की। तो हमारे मौलिक धर्म क्या थे, आपस में प्रेम प्यार से रहना, भाईचारे से रहना, जीवन में बहुत खुशियों का अनुभव करना, उमंग उल्लास का अनुभव करना, ये हमारे मौलिक गुण थे। लेकिन आज क्या हो गए हैं, छिप गए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, छिप गए हैं। क्यों कहेंगे कि खत्म नहीं हुए छिप गए हैं, क्योंकि उसकी बार बार याद आती है, काश मेरे जीवन में फिर से पहले वाला प्यार आ जाए, काश हमारे जीवन में फिर से पहले वाली खुशियां आ जाए, है ना। छुप गई है क्यों, क्योंकि जैसे पानी की मौलिक गुणधर्म जो था शीतलता क्यों छुप गया था, क्यों छुप गया था, उसने गर्मी को धारण कर लिया था। ऐसे ही हम आत्माओं ने भी इस संसार में प्रेम प्यार भाईचारे का जीवन जीते जीते कुछ और धारण कर लिया, और वो है गुस्सा, नफरत, छल, कपट, द्वेष, द्वंद, बदले की भावना, ऐसी ही कुछ बातें हमने धारण कर ली और हमारे मौलिक धर्म छुप गया। तो जो धारण करने से मेरी मौलिकता चली गई और जो मुझे परेशान कर रही है उसको कहते हैं अधर्म। जो धारण नहीं करना चाहिए था लेकिन धारण करके बैठे हैं, अधर्म। तो क्या है महाभारत का श्लोक कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है धर्म की ग्लानि होती है, ऐसे समय पर पिता परमात्मा धरा पर आते हैं। तो आपने सबने अपने मुख से कहा हाथ उठाकर कि सचमुच अधर्म बढ़ गया है, तो उसके वायदे के अनुसार उस पिता परमात्मा ने कहा होना चाहिए, कहा होना चाहिए उस पिता परमात्मा ने, धरती पर। तभी कहा कि संस्था की स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा ने ही की है, लेकिन कैसे की है, तो एक 60 वर्ष के दादा लेखराज नाम के एक बहुत बड़े हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, उनको निमित्त बनाकर परमात्मा ने इस संस्था की स्थापना की है। 14 वर्ष तक इस संस्था से जो जुड़े उन्होंने खूब तपस्या की और अपने जीवन को धर्म से परिपूर्ण किया, अपने जीवन में वो फरिश्ते वाली चमक पैदा की और फिर वो धर्म वो चमक सारे संसार को लुटाने के लिए सेवा केंद्र खुलते चले गए। तो 1936 में जब भारत अविभाजित था तब इसकी स्थापना हुई, फिर कैसे हम सभी जानते 47 में विभाजन हुआ, तो 1950 में हैदराबाद सिंध से ये संस्था माउंट आबू में स्थानांतरित हुई 5 मई 1950 को। वहां पे इसकी शुरुआत एक छोटे से कमरे में हुई थी, लेकिन आज वट वृक्ष की भांति ये संस्था विश्व के सभी खंडों में अपनी शाखाएं फैला चुकी है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ से भी इसका मेल मिलाप है। कई विश्व शांति पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। और इस संस्था की और एक विशेषता अगर हम कहें तो विशेष कर से इस संस्था में आते तो सभी हैं, भाई और बहनें मिलकर ही काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहनों के हाथ में है। तो ये वो अनोखी संस्था है जिसका संचालन नारी शक्ति करती है। जिस नारियों को सारे संसार ने अबला घोषित कर दिया था, परमात्मा ने उन नारी शक्ति को आगे रख के इस संस्था का संचालन करवा रहे हैं। तो 102 वर्ष की हमारी प्रशासिका, मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी के अध्यक्षता में ये संस्था आगे बढ़ रही है। और रिसेंटली ही उनको एक शांति पुरस्कार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो समाज सेवा से जुड़ी यह संस्था, नारी शक्ति को महत्व देने वाली संस्था, जिसे शास्त्रों में भी ये बात आती है, जहां जहां नारियों का सम्मान है वहां वहां देवताओं का निवास है। और देवताओं का निवास का मतलब है देवता माना भी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन कौन से मनुष्य? जिनमें दैवी गुण है, जिनमें मौलिक धर्म प्रत्यक्ष रूप से जीवन से प्रकट हो रहे हैं। तो जब नारियों का सम्मान होता है जहां जहां पर, वह दैवी गुण अपने आप पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, और ये विद्यालय उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि नारी शक्ति में जिस संस्था की डोर दी गई है, कैसे दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करते हुए हर व्यक्ति के जीवन को सुखों से भरपूर कर रही है। तो ये वो संस्था है जिसका लक्ष्य है नर को नारायण बनाना और नारी को श्री लक्ष्मी बनाना, अर्थात नर भी और नारी भी मनुष्य की गिनती में है और नारायण और लक्ष्मी मनुष्य की गिनती में है, लेकिन अंतर क्या है? नर नारी है साधारण मनुष्य जिनमें धर्म, मौलिक गुणधर्म कहीं छुप गए हैं, जो सुख शांति प्रेम खुशी छिप गए हैं, कहीं प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन नारायण और लक्ष्मी माना जिनमें वो मौलिक धर्म जीवन से प्रकट रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि वो नारायण और लक्ष्मी का सिर्फ आप चित्र भी देख लो ना, सिर्फ चित्र को देखने मात्र से कितना भी व्यक्ति दुखी क्यों नहीं हो, पल भर के लिए तो खुशी की लहर उसके मन में दौड़ जाती है। अनुभव किया है कभी ऐसा? सिर्फ दर्शन मात्र से। क्यों? क्योंकि उनका जीवन किससे भरा हुआ है? किससे भरा हुआ है? सुख और शांति से, प्रेम और खुशी से, आनंद और उल्लास से। तो वो मौलिक गुणधर्म उनके जीवन से प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। तो ये संस्था का लक्ष्य है कि नर को नारायण बनाना है, नारी को श्री लक्ष्मी बनाना है, और ऐसे हर नर को नारायण, हर नारी को लक्ष्मी बनाकर इस पूरे पृथ्वी पर क्या लाना है? नंदन वन स्वर्ग लाना है, कि जिस स्वर्ग का हम क्या गायन करते हैं, जहां एक एक बाला राधा होगी और एक एक बालक कान्हा होगा, है ना? तो ये वो संस्था है जहां ये कार्य चल रहा है। कि दुनिया में तो बहुत सारे विश्वविद्यालय होते हैं, कहीं इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, कहीं डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, कहीं वकील तैयार हो रहे हैं, कहीं टेक्नीशियन तैयार हो रहे हैं, कहीं मैकेनिक्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये कौन सी संस्था, ये कौन सा विश्वविद्यालय है जहां मनुष्य को क्या बनाया जा रहा है, देवता बनाया जा रहा है, देवत्व की ओर लेके जाया जा रहा है। आप इंजीनियर भले बन जाओ, डॉक्टर भले बन जाओ, पर वो दैवी गुण भी आप में होंगे वो जरूरी नहीं होंगे, है ना। लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है, डॉक्टर बनना कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, इंजीनियर बनना कोई लक्ष्य नहीं है, वो तो जीवन आजीविका का एक साधन बन जाता है। लक्ष्य क्या होता है कि जीवन किससे भरपूर हो, खुशियों से भरपूर हो, शांति से भरपूर हो, जीवन में भाईचारा हो, आपस में प्रेम प्यार हो, संबंधों में सुसंवादिता हो, ये जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का लक्ष्य है। तो ये जीवन का जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य तक हमें पहुंचाने वाला ये विश्वविद्यालय है। यहाँ वो ज्ञान की गंगा बहती है जो हमें मानव से देव बनाता है, जो जीवन में खुशियां लाता है। तो मैं पुनः पुनः आप सभी का ऐसा सुंदर लक्ष्य लेकर, अपना बहुमूल्य समय निकालकर जो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सत्कार करती हूँ और आपसे अपेक्षा रखती हूँ कि आने वाले 3 दिनों में आप क्या करेंगे, इस ज्ञान को अपने भीतर बहुत बहुत अच्छी तरह से भरते चलेंगे, अनुभव करते चलेंगे और साथ में लेकर जाएंगे, तो सचमुच पूरा जीवन क्या बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। तो ऐसे सुंदर लक्ष्य को और अधिक प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में हमारे आदरणीय सरोज दीदी जी भी बैठे हैं और साथ साथ इस सुंदर लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए मुख्य रूप से आप सबको यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे जय भगवान भाई जी भी बैठे हैं। तो मैं पहले तो भगवान भाई जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने मन की 2 बातें कहें कि आप इतनी मेहनत करके इतने बड़े ग्रुप को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो क्या लक्ष्य लेकर आए हैं। आदरणीय जय भगवान भाई जी।
ओम शांति। आप सभी यहाँ आए हैं अपने पिता के घर में, परमात्मा का घर हम सबका अपना ही घर है, इसलिए यहाँ आकर के सभी को ऐसा लगेगा हम कहीं बाहर नहीं आए हैं, अपने ही घर में आए हैं। तो जो भी भाई बहन यहाँ आए हैं उनको सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। जितने भी भाई बहन यहाँ आए हैं, ये 3 दिन हमारा सेशन चलेगा यहाँ पे। एक तो सभी भाई बहन सभी समय के पंक्चुअल रहे, समय पर जो था सारा यहाँ पर पंक्चुअलिटी है, एकदम समय पर सब चीजें शुरू हो जाती हैं, इसलिए कोई भी क्लासों को मिस ना करें। स्वयं परमात्मा पिता इस धरा पर आ चुके हैं और वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, जिन बहनों को का गायन है, देवियों को जिनको हम पूजते आए हैं, वो ये साक्षात्कार में वही देवियां हैं, वो जड़ मूर्तियां हैं और ये चैतन्य में देवियां हैं। वही इनसे बातें भी करो, सुनो भी, सवाल भी पूछो, कुछ भी करो, जवाब भी देती हैं वो जड़ मूर्तियां, जिनको हम भक्ति में याद करते थे, भगवान को ढूंढ रहे थे, कितने व्रत तीर्थ जब तक हमने किए हैं, परंतु किसको मिला नहीं वो, क्योंकि स्वयं वो आकर के इस धरा पर अपनी पहचान देता है और हमको हमारी पहचान देता है कि तुम हो कौन। हम स्वयं को भूले हुए हैं, तो उस परमात्मा पिता ने आके कहा, बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, तुम आत्माएं हो और मैं आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा हूँ। मैं अपने बच्चों का दुख देख करके इस समय इस धरा पर आया हूँ, क्योंकि चारों तरफ दुख अशांति है, पापाचार भ्रष्टाचार है, अनेक धर्म अनेक मत मतांतर हैं, सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि हम देह के धर्म में आ गए हैं, स्वयं को आत्मा भूल शरीर समझ बैठे हैं। इसलिए परमात्मा जो सर्वात्माओं के पिता हैं वो इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और हम सब मनुष्यों को देवता बनाने का कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से कर रहे हैं की ओर से। जितने भी बहनें भाई हैं ये जितना भी ज्ञान सुनाते हैं तो सारा परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ही है सुना रहे हैं। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए ये नहीं समझें कि हमको कोई साक्षात्कार हो कोई दर्शन हो जाए, क्योंकि वो ज्योति बिंदु हो उनको इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब आत्मा को ही नहीं देख सकते हम तो परमात्मा को क्या देख सकते हैं। तो आत्मा भी इन आंखों से नहीं दिखाई देती है, पर अनुभव तो सबको है ना कि हम सब देख रहे हैं सुन रहे हैं बोल रहे हैं बात करते हैं, तो आत्मा अंदर है। जब वो आत्मा निकल जाती है तो यही शरीर हमारा जड़ हो जाता है। इसी तरह से जैसे आत्मा को इस शरीर का आधार लेना पड़ता है बोलने के लिए, तो परमात्मा जो जन्म मन से न्यारा है, जिसका कोई माता पिता नहीं है गुरु नहीं है टीचर नहीं है, उसको भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो वो परमात्मा पिता जो फर्स्ट नंबर की आत्मा थी श्री कृष्ण, जब वो अपने अंतिम जन्म में आती है और अंतिम जन्म का भी उसका अंत का अवस्था होती है 60 वर्ष की आयु में, जैसे कि दीदी ने बताया है लेखराज दादा लेखराज, उसके तन में वो प्रवेश करके ये सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान सुना रहा है। इसलिए परमात्मा कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता है, वो अवतरित होते हैं। वो अपना बताता कि मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, इस दुनिया में मैं नहीं हूँ। इसलिए गाया है यदा यदा ही धर्म से गलानी भवति भारत, जब धर्म की अति गलानी होती है तो मैं फिर आऊंगा, वो कहकर के गया था आज से 5000 वर्ष पहले। तो अपने वायदे के अनुसार वो फिर आया है। तो आ करके उसको भी जैसे बोलने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है, तो जिस तन में वो प्रवेश करता है उसका नाम रखता है प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा को साधारण मनुष्य दिखाया है, दाढ़ी मूछ दिखाते हैं और उसके चार मुख भी दिखलाते हैं। देवताओं को जो था दाढ़ी मूछ नहीं दिखलाते हैं। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा ये सिंबॉलिक है कि परमात्मा उसके द्वारा आकर के स्थापना का कार्य कर रहा है। कौन किस चीज की स्थापना? नई दुनिया की स्थापना का कार्य है, जिसको कि स्वर्ग कहते हैं। सब धर्म वाले जानते हैं जाना चाहते हैं स्वर्ग में, कोई जन्नत कहता है कोई पैराडाइज कहता है हेवन कहता है स्वर्ग कहता है, परंतु जानते नहीं हम कैसे जाएं। तो परमात्मा इस समय आकर के हम सब आत्माओं के अंदर वो देवी संस्कार हमारे अंदर भरता है कि शांति सुख प्रेम ज्ञान शक्तियां सबसे संपन्न करके हम सब आत्माओं को तैयार करता है, जिससे हम मनुष्य आत्मा ही फिर देव आत्माएं बन जाती हैं। वही 33 करोड़ देवी देवताएं इस समय हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर से परमात्मा आकर के मनुष्यों को देवता बनाने का कार्य कर रहा है। इसलिए जो यहाँ पर आ गया है वो सभी भाग्यशाली आत्माएं हैं और सब स्वर्ग में के अधिकारी आत्माएं हैं। जो यहाँ पर आ जाते हैं बाबा के घर में, हम उसको भगवान ना कह करके बाबा कहते हैं प्यार से, क्योंकि यहाँ एक परिवार है, वो पिता और हम उसके बच्चे, तो परिवार है। भगवान से तो हम डरते भी रहते थे कि भगवान कभी ये ना कर दे ये ना कर दे, पर वो हमारा पिता है, इसलिए उससे संबंध जोड़े, संबंध से उसको याद करें। पिता है तो पिता का वर्षा स्वर्ग है, वो हम सब मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने के लिए आया है। तो इसलिए ये एक ईश्वरीय परिवार है, सभी को यहाँ एक परिवार की भासना आएगी, परिवार की तरह सब रहना। तो अभी मेरा कहने का भाव यही है, सभी भाई बहन यहाँ पर आए हैं तो पूरा लाभ उठा करके जाएं, अच्छी तरह से खुश मौज में बाप के घर में रहें, और जाकर के भी सभी सेंटर्स पर जाएं, रेगुलर क्लास वहां पर करें तो सुने तो सही परमात्मा क्या कह रहा है। 82 वर्ष से वो गीता का ज्ञान सुना रहा है और हम सब वंचित हैं उस ज्ञान से। 82 वर्ष हो गए 1936 से भगवान इस धरा पर आ चुका है। अब कोई कहे भगवान को दिखाओ कैसे, उसको दिखाया नहीं जा सकता, इन आंखों से नहीं देख सकते, पर हम उसकी क्वालिटियां शांति सुख प्रेम ज्ञान शक्तियां अनुभव करें अपने जीवन में। आज सभी मनुष्य आत्माएं दुखी और अशांत हैं, भय चिंताएं लगी हुई हैं, कल क्या होगा क्या होने वाला है। तो परमात्मा आकर के हम सब इन भय चिंताओं से मुक्त करता है कि बच्चे तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा साथी हूँ। भगवान इस समय सभी का मददगार बनता है आकर के, तो इसलिए सारे संबंध से उसको हम परमात्मा को याद करें और उसको अनुभव करें। दूसरा ये था कि जो जो भी भाई बहनों के अंदर, ब्रह्मा कुमारी जी के अंदर कोई भी किसी तरह की भ्रांतियां हैं, वो सब भी आप अपनी क्लियर करके जाना। कोई कहते हैं गरबा चुड़ाती हैं, कोई कहता कुछ करती हैं, ये जादू करती हैं, तो इसीलिए जितनी भी भ्रांतियां हैं वो सब दूर करके जाना। हम सब घर परिवार में रहने वाले ही रोज ये क्लास अटेंड करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो हमारा तो किसी ने कोई घरबार छुड़ाया नहीं है। आप सब भी घर परिवारों में रहते हुए ज्ञान और योग की शिक्षा लेकर के अपने को संपन्न करें, तो इससे जो परिस्थितियां फेस करने की पावर है वो हमारे अंदर सहज आती जाती है। तो परमात्मा इस समय आकर के वो सारी शक्तियां आत्माओं के अंदर भरता है, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये सारी जो शक्तियां क्वालिटियां हैं इस समय भगवान इस धरती पर आकर के और अपने से कनेक्शन जुड़ाता है कि तुम कैसे मुझे याद करो। वो सबको आपको यहाँ पर अनुभव कराया जाएगा कि हम उससे कैसे कनेक्शन जोड़े। इसलिए सवेरे जैसे 4:15 बजे अमृत वेले का समय रखा है और बीच बीच में भी आपको योग का अभ्यास कराएंगी सब बहनें यहाँ पे, तो आप कोई भी क्लास मिस नहीं करना। और अपना अनुभव भी हम सब लोग जो था फिर सुनाएंगे यहाँ पर, समय थोड़ा है, फिर किसी दिन है ना भी दूसरे दिन जो था अपने जीवन का अनुभव, हमने भगवान को कैसे पाया है। तो सब लोग भगवान कोई देखने की चीज है, सन्मुख बैठ बैठ करके बच्चों से बात कर करके, ज्ञान कोई ऐसा थोड़ी है ऊपर से कोई बैठ करके सुना देगा। सारे उसने गीता के 18 अध्याय जैसे शास्त्रों में सुनाए हैं, तो सन्मुख ही तो सुनाए हैं और किसी एक को थोड़ी सुनाएगा। इतने सारी मनुष्य आत्मा है सबको सुनाने के लिए आया हुआ हो, 140 कंट्रीज में ज्ञान जा रहा है। तो इसलिए सब भाई बहन जो था सब ध्यान से सारा ज्ञान सुने और सब प्राप्तियों से भरपूर होकर के जाए। ओम शांति,
ओम शांति। तो आप जो राजयोग शिविर करने आए हैं उस शिविर पर के लक्ष्य पर भी प्रकाश डालेंगे, आशीर्वचनों से आपको भरपूर करेंगे। हमारे आदरणीय सरोज दीदी जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आप पिछले 50 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं और 40 से भी अधिक वर्षों से अपना संपूर्ण जीवन इन ईश्वरीय सेवाओं में लगाया हुआ है। वर्तमान में आप दिल्ली वसंत कुंज में बेस्ड हैं और वहां पर जो उनके कनेक्टेड सेंटर से उसके भी आप डायरेक्टर हैं और इफ्को के विशेष करके ग्रुप आप यहाँ पर लेके आते हैं। अभी भी एक इफ्को का ग्रुप आया हुआ है आपका, उसी निमित्त यहाँ आना हुआ है। काफी सारी कॉर्पोरेट्स में भी आप जाके अपनी सेवाएं देते हैं, काफी भारत के अंदर भ्रमण भी करते हैं और हमारा जो एक स्पेशल विंग है स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उसके भी आप अपने जोनल लेवल पर कोऑर्डिनेटर हैं। तो काफी विशेषताओं से परिपूर्ण हमारी आदरणीय सरोज दीदी जी आप सबके सामने राजयोग शिविर का लक्ष्य और उससे होने वाली प्राप्तियां और आशीर्वचनों से आपकी झोली भरेगी आदरणीय सरोज दीदी जी।
ओम शांति, सभी प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बेशक कहीं शायद बहादुरगढ़ से ग्रुप आया है ये, लेकिन आप सभी दिल्ली के ही कनेक्शन में हैं और हम भी दिल्ली से ही आए हैं। ORC विशेष आप लोगों को निमित्त बना है यहाँ लाने के लिए। ORC तो वहां भी दिल्ली का हेडक्वार्टर है, वहां पर सभी गंगाएं और नदियां जाकर मिलती हैं, सब कार्यक्रम चलते हैं, इसलिए एक ही परिवार के सभी हैं। वैसे तो सारा विश्व ही एक परिवार है। बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलकर, जय भगवान भाई से तो फ्रीक्वेंटली मिलना होता है। मैं भी ORC में क्लासेस के लिए जाती हूँ तो आपसे मुलाकात होती है। मुझे मालूम हुआ कि आपने अपने सगे संबंधियों को, संपर्क वालों को यहाँ तक लाया है। आप मुबारक के पात्र हैं। मुख्य रूप से जो हम आपसे, जैसा कि हमारी इंदिरा बहन ने बताया कि आप सभी, विशेषकर हमारा जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है माउंट आबू में, ज्ञान सरोवर में, राजयोग के लिए शिविर, राजयोग शिविर की क्लासेस के लिए आए हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका विशेष स्पेशलाइजेशन इसी क्षेत्र में है। ये वही भारत का प्राचीन राजयोग है जिसका गीता में वर्णन है कि भगवान ने अर्जुन को राजयोग का ज्ञान सिखाया। वह राजयोग जिसकी ख्याति समस्त विश्व तक फैली हुई है और बहुत सारे स्कॉलर्स, लर्नेड भारत से ही योग सिखाने के लिए विदेशों तक जाते हैं। परंतु खेद की बात है कि भारत स्वयं राजयोग के ज्ञान से अनभिज्ञ है। राजयोग का स्थान हठ योग और शारीरिक आसनों ने ले लिया है। जब भी योग की बात आती है, लोग हमारे पास पहुंचते हैं, वो ये पढ़कर कि दिस इज योगा सेंटर, वो कहते हैं यहां कोई फिजिकल एक्सरसाइज भी आप प्रैक्टिस करते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम अपने शरीर को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो शारीरिक योग, उसकी भी नितांत आवश्यकता है। हम उस योग को प्रमोट करते हैं, परंतु राजयोग का एक विशेष अपना ही स्थान है। इस योग में कोई शारीरिक आसन नहीं सिखाए जाते। दिस इज सिंपली ए मेंटल ड्रिल, मेंटल एक्सरसाइज। इसमें कोई भी जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद, वर्ण भेद, उम्र भेद से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर कैसे स्वयं को पहचाने और अपने पिता को याद करें, ये अभ्यास कराया जाता है। और राजयोग का सीधा कनेक्शन मन की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने से है। जो भी आपका पोटेंशियल है, इनर पोटेंशियल, उसे आप स्टिमुलेट करेंगे राजयोग के अभ्यास से। और ये कहा जाता है कि मन का रोगी तन के रोगी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तन से अगर हम कहीं बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाके उपचार कराते हैं, परंतु कई बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पेशेंट, आप अपने को समझ रहे हैं, फिजिकली क्लिनिकली आप बिल्कुल फिट हैं, यू डोंट हैव एनी फिजिकल प्रॉब्लम, लेकिन पेशेंट फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं ठीक हूं। ऐसा है, वो कहता है अभी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ठीक है, आपका हार्ट कार्डिक सिस्टम भी ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम भी ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपको कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है पेशेंट कि मैं ठीक हूं। तो कहां समस्या है, कहां है? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है ना। और ये कहा जाता है कि कि 80% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती हैं। राजयोग मानसिक तनाव को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। राजयोग जीवन जीने की कला सिखाता है और राजयोग के अंतर्गत हर बात को आध्यात्मिक और व्यवहारिक रीति से कर्म में कैसे लाया जाए उसका अभ्यास कराया जाता है। दिस इज अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। जो हम अध्यात्म का ज्ञान सीखते हैं उसे जीवन में धारण कैसे करें, वो राजयोग इसमें महती भूमिका निभाता है। अब आप कहेंगे आखिर भी राजयोग क्या है? योग शब्द का लिटरल मीनिंग है दो चीजों का मिलन, संबंध अथवा जोड़। इसे हम योग कहते हैं। कम से कम दो, इससे अधिक भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव के साथ अगर आपका मन का या बुद्धि का कनेक्शन है, उस पर आपका ध्यान केंद्रित है, उसी का ही चिंतन आपके मन में रहता है, वह भी एक प्रकार का योग है। लेकिन राजयोग क्या है? योगा मतलब कनेक्शन, राजयोग का मतलब है कनेक्शन विद द सुप्रीम। राजा शब्द सुप्रीम पावर की तरफ इशारा करता है। इस संसार की जो सुप्रीम पावर है, सुपर पावर है, वो है सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा। तो सरल शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन राजयोग है। इसको हम राजयोग इसलिए भी कहते हैं, इसका अभ्यास करने से हम अपने इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। पहले हम क्या थे? इंद्रियों के गुलाम थे। हमारे मुख से एक ही बात निकलती थी, भाई मैं चाहता तो नहीं हूं लेकिन क्या करूं, मेरे मुख से निकल गया। ऐसा होता ना, आदत है तो बोल जाते हैं। कई कहते हैं मैंने देखा था, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था पर मेरी भावना बदल गई, मेरा हाथ चल गया, मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल गए, व्हाट कैन आई डू, आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूं, जो मैं नहीं चाहता मुझसे हो जाता है। तो इसका मतलब मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है। लेकिन राजयोग हमें इंद्रियों का राजा बनाता है। और राजयोग इसको हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सब योगों का राजा है। जहां सभी भक्ति योग का अंत होता है वहां राजयोग का आरंभ होता है। आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे, वो आपको 9 द्वारों का ज्ञान देंगे और लास्ट में कहेंगे दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। अब आप अपने मन को इस आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। वो ये सिखाते हैं ये आपका आखिरी बिंदु है, इसको लोग 10वां द्वार कहते हैं। तो जो उन्होंने आपको आखिरी बिंदु बताया, जब आप ब्रह्मा कुमारी इसमें आते हैं, ये हमारा पहला पाठ है कि आप एक आत्मा हैं। तो जहां उन्होंने अंत किया वहां से हमने शुरुआत किया। ये सब योगों का राजा है, इसलिए इसे राजयोग कहा जाता है। और तीसरा, हम इसको राजयोग इसलिए भी कहते हैं, राजयोग या राजयोग, राज मतलब सीक्रेट, बहुत सारे सीक्रेट्स इसमें समाये हैं, जीवन के कुछ गहन रहस्य कुछ गुह्य पहेली इसके अंदर है। पहला, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों जीता हूं, सृष्टि का क्रिएटर कौन है, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, राजयोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, इसलिए इसको राजयोग भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे राज इसमें समाए हुए हैं, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देगा ये राजयोग। और जैसे आपको बताया कि राजयोग में बहुत सारे योग आते हैं, इसलिए इसको हम कर्म योग भी कहते हैं, ऐसा योग जिसको आप कर्म करते भी कर सकते हैं। हाथों से हम कर्म करें और बुद्धि हमारी परमात्मा की याद में रहे, संभव है या नहीं है? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल। आपने देखा होगा पहले, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, पहले विलेजेस में क्या होता था, महिलाएं सिर पे मटके का बैलेंस बना के चलती थी, गोद में बच्चा भी उठाया हुआ है, अपनी पड़ोसन से बात भी कर रही है, लेकिन उसको इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसे यह भी पता है मुझे कहां जाना है। ये नहीं है कि बातचीत करते वो अपना रास्ता बदल जाए। तो एट ए टाइम कितने काम कर रही है? तो हम भी परमात्मा को याद करते कर्म कर सकते हैं। अब आप सोचिए, कर्म योग का मतलब वह योग जो आपके कर्म में रिफ्लेक्ट करे। क्या रिफ्लेक्ट करे? जो परमात्मा के गुण हैं, शक्तियां हैं, वह प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का स्रोत है। उनके सारे गुण और उनके चरित्र मेरे चरित्र में रिफ्लेक्ट हो, कर्म करते, ये है कर्म योग। इसी को ही बुद्धि योग भी कहते हैं, द योगा ऑफ इंटेलेक्ट। इसमें हमें बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना है। ठीक है, फिजिकली यू आर डूइंग नथिंग, आपको अपने को किसी पर्टिकुलर पोस्चर में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से होना चाहिए। जैसे एक बल्ब है, उसके अंदर में तारें जुड़ी हुई हैं, बाहर से वो कितना भी हवा से हिल रहा है, पर जब तक अंदर से वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, लाइट आती रहेगी। ऐसे अगर आपको कहीं शरीर में तकलीफ है, आपने अपना पोस्चर चेंज कर लिया, इट हार्डली मैटर। लेकिन बुद्धि का कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, इसलिए इसका नाम है बुद्धि योग, द योगा ऑफ इंटेलेक्ट। और इसी को ही हम सहज योग भी कहते हैं, ऐसा योग जो बहुत ही सरल है। यहां तक कि जो हमारे एल्डरली आते हैं, सीनियर सिटीजन्स, जिनको एक्सरसाइज का अभ्यास भी नहीं है या नहीं कर पाते, कुछ हैंडीकैप्ड लोग हैं या उम्र में कुछ छोटे हैं, सब लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अभ्यास में ला सकते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद द फिजिकल एक्सरसाइज, नो एज बार, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन इट। कोई भी आकर के इसको प्रैक्टिस में ला सकता है, वेरी इजी। सहज योग। और इसी को ही कहा जाता है भक्ति योग। भक्त मतलब जुड़ा हुआ, विभक्त मतलब अलग कर देना, भगवान के प्यार में जुड़ जाना। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे सभी रिश्ते भगवान के साथ हैं। भक्ति में गाते थे ना, तोमे माता च पिता, तोमे बंधु च सखा, तोमे विद्या द्रवणम तोमेव। लास्ट में क्या कहा? तोमेव सर्वम मम देव देव। सारे रिश्ते गाने के बाद फिर हम कहते हैं, हे दाता, अगर मेरे मुख से कोई रिश्ता ना निकला हो तो मैं वो सर्वम मम देव देव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। वहां तो केवल गाते ही थे, लिटरली हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन यहां आने के बाद हम सभी रिश्तों का सुख लेते हैं, अनुभव करते हैं, फील करते हैं। तो जब हम सर्व संबंधों से उस पिता को याद करते हैं तो हमारा ध्यान सब तरफ से हटकर उसी में जुड़ जाता है। सो दिस इज ट्रू भक्ति योगा। इसी को ही सन्यास योग भी कहते हैं, ऑल्सो सन्यास योग। सन्यास का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई गृहस्थ का सन्यास करना है, घर बार का सन्यास नहीं करना है, ठीक है ना। अभी भाई जी सुना रहे थे कि बहुतों को मिसकंसेप्शन है ब्रह्म कुमारी इसके बारे में कि वो घर बार छुड़ाती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जैसी बहनें तो, डेडिकेटेड बहनें तो 40,000 होंगी, आप जैसा परिवार 9 लाख सदस्य परिवार इस ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलर 1 घंटा क्लास करते हैं और अपने कर्म क्षेत्र में इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो कोई घर बार की बात नहीं है छोड़ने की। लेकिन गृहस्थ में रह करके जो हमारी नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, जो डिसवैल्यूज हैं, जो हमारे मनोविकार हैं, अशिष्ट व्यवहार है, कुटिल संस्कार है, इसका सन्यास करना, यही तो सन्यास है। संभव है या नहीं बताएं? बहुत आसान है, वेरी इजी। आपको हम बताएंगे, टिप्स देंगे कैसे छोड़ना होता है। छोड़ना थोड़ी है, छोड़ना नहीं है, हमें तो केवल लेना है, छूटता तो अपने आप जाएगा। बड़ी सरल विधि परमात्मा ने बताई है और इसी को ही हम ज्ञान योग भी कहते हैं। इट इज वेरी मच बेस्ड ऑन नॉलेज। ये योग ज्ञान पर आधारित है। जब तक हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है, हम राजयोग का अभ्यास नहीं कर सकते। देखो, एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। पहले समय में क्या होता था, जब एक लड़की की लड़के से सगाई होती थी तो पहले तो अपने पेरेंट्स ही वर का चयन करते थे। कुमारी कन्या को तो पता ही नहीं होता था कि मेरा होने वाला पति कौन सा होगा। तो मान लीजिए उनकी सगाई हो गई और वो मार्केट में किसी काम से दोनों गए और उस लड़के का पांव उस लड़के के पांव पे आ जाता है भीड़ में, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? कि तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम चल के नहीं, देख नहीं सकते हो। लेकिन अगर उसे ये मालूम पड़ जाए कि यही वो है जिससे मेरा रिश्ता होने जा रहा है, तो उसकी फीलिंग्स अलग होंगी ना। रिश्ता तो है, ज्ञान नहीं है, है ना, तो उस रिश्ते का सुख नहीं ले पाए। ऐसे ही परमात्मा को हम याद तो करते रहे कई जन्मों से, पर ज्ञान नहीं था कि उसका एक्यूरेट स्वरूप क्या है, नहीं ज्ञान था। तो रिजल्ट क्या हुआ कि अगर वो स्वरूप मेरे सामने भी आ जाए तो मैं उसका सुख नहीं ले पाऊंगी। ज्ञान तो चाहिए ना। तो सबसे पहले 3 चीजों का ज्ञान चाहिए राजयोग में। पहला है राजयोग में आत्मा का स्थान क्या है। पहला है साधक, दूसरा साध्य, तीसरा साधना। साधक, साध्य, साधना। राजयोग को सीखने की इच्छा रखने वाला मैं साधक कौन हूं? Who am I? Who am I? मैं कौन हूं? ये पहला पाठ है, इसका ज्ञान चाहिए और बड़ा एक्यूरेट नॉलेज, नो कंफ्यूजन, बिल्कुल क्लैरिटी हो मैं कौन हूं। दूसरा साध्य, जिस पर मैंने मन एकाग्र करना है वो कौन है? परमात्मा। उसका भी परिचय चाहिए, मैंने किस पॉइंट पर अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है। और तीसरा साधना, जिसको हम कहते हैं मेथडोलॉजी ऑफ राजयोगा, टेक्निक ऑफ राजयोगा, राजयोग की विधि क्या है, आधार क्या है। जब हम ये तीन बातों का ज्ञान ले लेते हैं तो राजयोग का अभ्यास बहुत सरल हो जाता है। तो अभी आप सायंकाल में, मेरे ख्याल में आपका पहला सत्र रहेगा, आपसे मुलाकात होगी राजयोग में आत्मा का क्या स्थान है। क्योंकि अभी तक तो केवल हम लोग कहते ही चले आए थे, है ना भाई, हम आत्मा हैं, पर उसकी डेप्थ क्या है, उसकी गहराई क्या है, आत्मानुभूति को हम कैसे डिफाइन करें, ये बातें जब हमारी समझ में आएंगी तो फिर चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते वो आपके कार्य में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों का 3 घंटे का कंडेंस्ड कोर्स होता है, 3 घंटे का, 3 दिन का नहीं, 3 घंटे का। सेवा केंद्रों पे भी चलता है, लेकिन सेवा केंद्रों पे ऐसा होता है कि आप घर से आए, 1 घंटा आपने क्लास किया, फिर वापस आप उस एटमॉस्फेयर में चले गए। लेकिन जब हम यहां पवित्र स्थल पर आते हैं, पवित्र स्थान पर आते हैं, तो हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एटमॉस्फेयर मिलता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, अभी तो हम, कई बार मैं कंपनीज में प्रोग्राम देती हूं तो वो लोग कहते हैं भी हम अपनी संस्था का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। मैंने कहा आप लोग तो संस्थाओं का स्वॉट एनालिसिस करते हो, हम तो सेल्फ का स्वॉट करते हैं। मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे थ्रेट्स क्या है, है ना। एकांत में बैठ के रिफ्लेक्शन तो करना है ना, जरूरी है कि नहीं है? बोलो, जरूरी है। और आज खासकर जो दिल्ली जैसे महानगर नगर हैं, बॉम्बे जैसे स्थान हैं, वहां पर तो ट्रैफिक की इतनी समस्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए 2 से 2.5 घंटे तो कम से कम लगते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी है, रैट रेस में सब चल रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका भी नहीं मिलता है, और कभी मिल भी जाए तो अभ्यास ही नहीं है, इसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। मेरे को एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है, मैं बता रही हूं आपको। कहते हैं कि एक बार एक महिला कॉस्मेटिक शॉप पे गई कॉस्मेटिक्स लेने के लिए, तो उसने कहा कि मुझे आप एक लुकिंग ग्लास दें जो क्वालिटी वाला हो। तो उसने जो है, दुकानदार ने लुकिंग ग्लास दिया, तो उसने देखा, तो देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा लुकिंग ग्लास, तो कहा कि आजकल आपकी क्वालिटी चीजों की डिटेरियोरेट होती जा रही है, आज से 40 साल पहले मैं तुम्हारी दुकान पे आई थी, इतना अच्छा लुकिंग ग्लास था, इतनी सुंदर शक्ल दिखाता था, वो राज ये तो सही शक्ल नहीं दिखा रहा है, इसकी क्वालिटी को ठीक करो। तो उसने प्यार से बोला, माताजी 40 साल पहले आपकी भी तो शक्ल कुछ और थी, अब आप सोचिए, लुकिंग ग्लास तो वही दिखाएगा जो रियलिटी है, पर आज मैं अपनी रियलिटी को जानना ही नहीं चाहती, ठीक बात है। तो पॉइंटिंग फिंगर किस पे आ रही है, दूसरे पे, सेल्फ के लिए सोच रहे हैं, दूसरे पर आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, ये इवेंट्स, इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब्ड हूं, आई गेट डिप्रेस्ड। मेरा कोई कारण नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी हूं, इनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये सारा क्या है, ये हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, सेल्फ के बारे में नहीं सोचते। राजयोग हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन देता है। हम तो एकांत में बैठते हैं ना, मेरे को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कहीं हम अच्छे काम के लिए गए, कुछ ठीक नहीं हुआ, तो मैं सोचती हूं कि आज ना आपने योग ठीक नहीं किया, एकांत में बैठ के बाबा को याद करो, जो कुछ होता है ना तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, सर्वशक्तिवान की सकाश तुम्हें मिल रही है, एकांत में बैठ के एक्यूमुलेट करो उसकी पावर्स को, फिर देखो काम ना हो संभव ही नहीं है। आ गया ना सेल्फ पे फोकस करना, और अगर बहुत अच्छा हुआ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपकी ब्लेसिंग्स सदा हमारे साथ रहें, है ना। ऐसे अगर हम सदा अपने आप को फोकस करते रहें, तो आप देंगे आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। आज तो जीवन क्या बना हुआ है, संघर्ष, और लोगों ने कह दिया संघर्ष ही जीवन है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे संघर्ष ही जीवन नहीं है, संघर्ष के ऊपर विजयी बनना यह जीवन है। यू हैव टू बी विक्टोरियस, यू हैव टू बी विक्टोरियस, ये तो आएगा लाइफ में, मुझे उसको जीतना है, यही तो राजयोग है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, और हमारा मन करता है कि अपने भाई बहनों से इसको शेयर करें। तो जो परमात्मा ने ये प्रसाद दिया है आपसे हम शेयर करेंगे, हमारी बहुत अच्छी अच्छी बहनें एक्सपीरियंस्ड आप सबसे मिलेंगी, आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, पूरा पूरा लाभ उठाएं। और ज्यादातर लोग कोर्सेज के लिए भी जाते हैं, रेजोल्यूशन भी तैयार करते हैं, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ करते हैं, पर हम कितना कर पाते हैं हम सभी जानते हैं। लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप 3 दिन का कोर्स करने के बाद कुछ ऐसे टिप्स लेके जाएंगे, कुछ ऐसे टूल्स लेके जाएंगे, जो आप स्वयं को, अपने पड़ोस को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने प्रोफेशनल एरिया को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, कुछ समय के लिए नहीं, जीवन पर्यंत, टिल योर लास्ट ब्रेथ, यू वुड बी बेनिफिटेड बाय ऑल एस्पेक्ट्स। विद दिस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको एक बार बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ओम शांति। इन साइलेंस करेंगे।